ॐ नमः सिद्धेय ॐ नमः सिद्धेय ॐ नमः सिद्धेय ॐ श्रुतात्महे सम्यक् दर्शन चरण गुण पाय कुकर्म की पाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भये भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान पे होत तत्व श्रद्धा चरण धारि केवल लहे पावे पद निर्वाण नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जास उजास ते जाने निज गुण था लब्धि सार को पाय कर करी के क्षपणासार ओ हे प्रवचन सार सो समय सार विकार। लब्धि सार ग्रंथ के आधार से हम यहाँ पंच लब्धि जो प्रथमोपशम समय से पूर्व होती है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब प्रायोगिक लब्धि शुरू करने के पहले जो कुछ सुबह चर्चा हुई थी ना, नलिबेन का प्रश्न है कि हमने जो कहा था कि कोई घटना घटती है तो घटना की तरफ देखकर हम कहते हैं हाँ हाँ ये क्रमबद्ध पर्याय ऐसा ही था ऐसा ही होना था, तो इसमें गलत क्या बात है, सही तो है ना, क्योंकि प्रत्येक जो पर्याय है वो क्रमबद्ध ही होती है। तो हमने वो घटना घटी और कहा तो इसमें गलत क्या किया, हाँ तो घटना की तरफ देखकर हम क्रमबद्ध है ऐसा कहते हैं वो हमारा निर्णय सही नहीं है, वो बात सही है, वो है तो क्रमबद्ध, परंतु हमने कहाँ देखकर उसको बताया, कोई विशिष्ट घटना की तरफ पर्याय की तरफ देखकर हमारा निर्णय नहीं हो सकता। कोई एक पर्याय देखी तो एक पर्याय वो क्रमबद्ध है कैसे कह सकते हैं, पूरा ही अनादि अनंत पर्यायों का क्रम देखेंगे तो कह सकेंगे ये क्रमबद्ध है। तो ये पूरा ही अनादि अनंत पर्यायों का क्रम किसने देखा है, हाँ भाई हर्षद भाई बहुत अच्छा, केवली ने देखा है। तो केवल ज्ञानी का क्या आपको भरोसा है, तो जो अपने स्वयं के सर्वज्ञ स्वभाव का श्रद्धा करके उसका भरोसा करके विश्वास करके उसमें लीन होता है, दूसरे शब्द में जिसने अपने सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा का आश्रय लिया है, दूसरे शब्दों में जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, क्यों, क्योंकि उसने सर्वज्ञ स्वभाव क्या होता है, सर्वज्ञ का स्वरूप क्या है, उसको अपने स्वभाव के आश्रय से उसका निर्णय किया है, तब उसने कहेंगे कि हम उसका क्रमबद्ध का निर्णय सही है। क्योंकि हम बाह्य चीजों देखकर कोई घटना, क्योंकि अन्य मति भी कहते हैं ये ईश्वर की ऐसी है, कोई नियतवादी होते ना, नियतवादी वो क्या कहते हैं, ऐसा ही होना है, सर्वथा नियति से कार्य होता है ऐसे उनकी मान्यता है, सर्वथा पांच समवायों का स्वीकार नहीं है और एकमात्र नियति से ही सब कुछ होता है ऐसा मानने वाले हैं। और हम भी कहते कि क्रमबद्ध में होना है वैसा, तो क्या हमारा ये सही मानना है, इसलिए वो सुबह मैंने जो कहा था भले सभी पर्याय क्रमबद्ध है परंतु हमने उसका निर्णय किया ये कब कह सकते हैं, तो तभी कह सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे भी प्रायोगिक लब्धि पर, कुछ नहीं समाधान हुआ, देखो क्रमबद्ध पर्याय कहना अलग बात है और उसका निर्णय होना अलग बात है। तो निर्णय किसके हुआ है, तो जिसने आत्मा का अनुभव किया है। तो आत्मा का अनुभव कौन करता है? जो अपने सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा का आश्रय लेता है, उसमें एकाग्र होता है। तो क्या इस अज्ञानी जीव ने अपने आत्मा का आश्रय लिया है? क्या उसको सर्वज्ञ का, सर्वज्ञता का भरोसा है, पता है? तो नहीं है। एकमात्र वो कहने के लिए कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मरता है, कोई अन्य कोई चीज होती है, हाँ ये क्रमबद्ध था, तो उसका ये कहना निर्णय सहित नहीं है। ये बात कहना चाहते हैं,
जो जान अरिहंत
है ना, क्योंकि हमने वो देखा है प्रवचन सार में भी, जो अरिहंतों को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानते, उसका मोह क्षय हो जाता है। यानी क्या, उसने सर्वज्ञ स्वभाव को जान लिया है, सर्वज्ञ को जान लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अपना ये विषय चल रहा ना आगे। अब हम प्रायोगिक लब्धि की बात करेंगे। हाँ, 90 है। देखो सम्यक दर्शन, जो अभी देशना लब्धि जो हमने देखी थी, तो उसमें वो परीक्षा पूर्वक निर्णय करने का कार्य भी उसका चल रहा है। तो वो जो उसका परीक्षा करना तत्व विचार का जो कार्य चल रहा है, उस तत्व विचार के काल में उसके कर्मों में क्या क्या बातें होती है, ये जो नाम है ना प्रायोग्य लब्धि, लोगों को ऐसा लगता है को विशिष्ट प्रयोग करता होगा इसलिए प्रायोग्य लब्धि है। कौन सा प्रयोग? ध्यान करने का प्रयोग। परंतु ऐसा नहीं है। प्रायोग्यता ना विशिष्ट योग्यता होती है। प्रयोग्य, योग्यता के आगे प्रा लगा लिया, तो प्रायोग्यता यानी उसकी विशिष्ट योग्यता होती है। कर्मों में क्या क्या बातें बनती है उसकी बात यहाँ बताएंगे। जीवों के परिणामों में तो क्या होता है, तो उसके तो तत्व विचार चल रहा है, उसकी तो विशुद्धि चल रही है। अब हम यहाँ विस्तार से देखेंगे तो ये बात अपने ख्याल में आएगी। हम पढ़ते हैं ये प्रायोगिक लब्धि, जहाँ लिखा है बोल्ड लेटर में वहां से पढ़ेंगे। क्षोभशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि पूर्वक जीव की विशुद्धि प्रति समय बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो तत्व का विचार कर रहा है। हमें तो ऐसा लगता है तब तक पुण्य करना कि नहीं करना, शुभ भाव करना कि नहीं करना। अब कहिए तत्व विचार करना ये सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव है। हमें क्या लगता है कि इससे क्या होगा, विचार करने से क्या होगा? हम कुछ क्रियाएं करेंगे, उपवास करेंगे, यात्रा करेंगे, पूजा करेंगे, है ना, दान देंगे, तो वो तो शुभ भाव है ही है। परंतु ये सम्यक दर्शन होने के लिए कार्यकारी ऐसे कौन से है? तो आत्मा संबंधी विचार, तत्व का निर्णय। निमित्त से कार्य नहीं होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में विराजमान है, प्रत्येक द्रव्य कायम टिकते हुए स्वयं का परिणमन स्वयं में कर रहा है, आदि ये जो सारी बातें हैं, इस तत्व का जो विचार चलेगा उसी से ये सारी बातें हो रही है। हमने देखा देशना भले उसने पहले सुनी है, मान लेते हैं कि एक महीने पहले उसने उपदेश सुना है, और अभी फिर दोबारा वो नोट्स निकाल के पढ़ रहा है, ग्रंथ निकाल के पढ़ रहा है, और फिर उस काल में उसका तत्व विचार चल रहा है। जिस काल में तत्व विचार शुरू करता है उस काल में अभी उसके क्षोभशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और उसके साथ साथ प्रायोगिक लब्धि, चार एक साथ चालू हो जाती है। जिस काल में तत्व विचार चलेगा, तत्व विचार छोड़कर अन्य कार्यों में चला जाता है, दुनियादारी की अन्य कोई कार्य हो, रसोई हो, व्यापार हो, टीवी देख रहा हो, अन्य कुछ चल रहा, तत्व विचार छूट गए तो उसके वो चारों ही लब्धि नहीं रहेगी, इसलिए उसका काल भी अंतर्मुहूर्त कहा है। ऐसे नहीं कि उसने एक बार देशना सुन ली है और अभी वो लगातार प्रायोगिक लब्धि में, ऐसा हो नहीं सकता। ये अंतर्मुहूर्त के लिए बात चलती है। अब हम देखेंगे इसको क्या क्या होता है। पहले पारिभाषिक शब्द इसमें बहुत सारे आने वाले हैं और उन सब का हम अर्थ देखेंगे। तो क्षोभशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि पूर्वक जीव की विशुद्धि प्रति समय बढ़ती जाती है। यानी उसके जो मंद कषाय तो पहले हुआ था, अब उसकी कषायों की और मंदता 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 चल रही, लगातार उसकी कषाय मंदता की ओर बढ़ रहे, यानी उसके शुभ परिणाम शुभ से और शुभतर होते, शुभतर से और शुभतर होते, ये लगातार चल रहे। क्यों? तत्व विचार के कारण। उसके कारण आयु बिना अन्य सात कर्मों की स्थिति घटकर आयु कर्म में कुछ परिवर्तन नहीं होता। आयु कर्म की स्थिति कम हो जाएगी तो चलेगा कि नहीं चलेगा अपने को? हमारी 100 साल की आयु है और 100 साल की मिटकर 1 साल की रह जाए, नहीं चलेगा। हाँ, क्योंकि हम आयु को छोड़ना नहीं चाहते। क्यों भाई? मोक्ष हो जाए मान लेते तो क्या होगा? नहीं चाहते ना आप? आयु भोगना चाहते कि नहीं चाहते? तो चलेगा। तो आयु में कोई परिवर्तन नहीं होता। अन्य कर्मों में क्या होता है? उसकी स्थिति घट जाती है। हमने देखा है कि मिथ्यात्व की अधिक से अधिक स्थिति कितनी होती है? हाँ, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, हम हिंदी बोल रहे हैं ना, 70। और अन्य की जो चारित्र मोहनी है उसको 40 कोड़ा कोड़ी सागर, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय और वेदिनी की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर। अब इतने सर्वोत्कृष्ट स्थिति में ये होता नहीं है, फिर भी अभी उसके कषाय मंदता की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो नया बंध हो रहा है वो भी कम स्थिति का बंधेगा, और ऑलरेडी सत्ता में जो कर्म पड़े हैं उसका क्या होगा? एक साथ अभी किस प्रोसेस के द्वारा स्थिति घटती है वो देखेंगे। शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, स्थिति घटकर अंत कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। हमने अंतर्मुहूर्त शब्द देखा था ना, उसका अर्थ क्या है? एक मुहूर्त से कम, अंतर यानी उससे कम, और एक आवली से ज्यादा। ऐसे जो काल है उसको हम कहते हैं अंतर्मुहूर्त। अब यहां शब्द क्या है? अंत कोड़ा कोड़ी सागर, यानी एक कोड़ा कोड़ी सागर से नीचे। पहले कितना हो सकता था? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अब कितना हुआ? तत्व विचार के काल में उसने कर्म में कुछ किया नहीं, कितना हो गया है? अंत कोड़ा कोड़ी सागर, यानी एक कोड़ा कोड़ी के नीचे और 1 करोड़ के ऊपर, इतनी उसकी स्थिति बन जाती है। कौन से कर्म में? शुभ में भी और अशुभ में भी। अब वो कौन से प्रोसेस के द्वारा होती है उसकी बाद में करेंगे।
कहता है ना कि जीव तो त्रस्त कायम है, सिर्फ 2000 सागर तक ही रहता है। इतना लंबा है।
देखो, ये आयु की बात नहीं चल रही है, हाँ अन्य कर्मों की बात चल रही है। आपका प्रश्न ऐसा है, हमने सुना है कि जीव त्रस पर्याय में 2000 सागर काल तक ही रहता है, अधिक नहीं। तो यहाँ तो इतनी स्थिति आप बता रहे हो, हाँ ऐसा ही है। जो जीव उसी भव में मोक्ष जाने वाला है, उसके भी 6ठे 7वें गुणस्थान में गया तो भी उसके अंत कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति है, शपक श्रेणी मान रहा है तो भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है। परंतु उसमें ऐसे कोई प्रोसेसेस हो जाते हैं जिसका नाम अभी आने वाला है, स्थिति कांडक घात। सागरों की स्थिति घटती 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 चली जाएगी शपक श्रेणी में। तब तक तो सबकी सम्यक दर्शन होने से लेकर उसकी स्थिति कितनी रहती? अंत कोड़ा कोड़ी सागर। ये संगी पंचेंद्रियों को ही सम्यक दर्शन होता है, बात सही है ना? अब हम एकेंद्रियों की अगर स्थिति देखेंगे, एकेंद्रियों में तो बंध और स्थिति भी उसकी एक सागर जितनी हो जाती है। कोई संगी पंचेंद्रिय मरकर एकेंद्रियों में चला जावे तो उसकी स्थिति घटती चली जाती है, और वहां का बंध भी छोटा है, एक सागर से ज्यादा बंधता ही नहीं। जो तीव्र मिथ्या दृष्टि जीव संगी पंचेंद्रिय 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधता है, ऐसे मिथ्यात्व सहित जो कोई एकेंद्रीय जीव जो है वो अधिक से अधिक स्थिति बांधेगा तो कितना? एक सागर ही बांधता है। तो एकेंद्रीय होना अच्छा कि नहीं होना? एकेंद्रीय में से सम्यक दर्शन नहीं होगा, वो मात्र स्थिति घट गई है, वहां से पंचेंद्रिय में आते ही वो स्थिति लंबी बंधेगी और फिर वो अनेक कड़वा कड़ी सागरों की हो जाएगी। तो यहां तो हम संगी पंचेंद्रिय जीवों की बात कर रहे हैं, वो स्थिति घटकर अंत कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती है। कब होती है? इस तत्व विचार के काल में। स्थिति का यह घटना स्थिति कांडक घात द्वारा होता है। ये स्थिति कांडक घात क्या है, हमने देखा था जब कर्म बनते हैं तो उसकी निषेक रचना होती है, याद है, आबादा काल रहता है और आबादा काल के बाद प्रत्येक समय में एक एक निषेक, इस तरह से एक समय में बंधने वाले की बात की थी। अब हम सत्ता में जो कर्म पड़े हैं उसका जो अगर हम ग्राफ देखेंगे तो क्या है, कोई लॉर्ड जो है वो पहले समय में उदय में आने वाला है, फिर दूसरे समय में, फिर तीसरे समय में, इसको कहते हैं सत्ता के निषेक। भाई ख्याल में आता है, पहले समय में उदय आने योग्य कभी भी बांधे हो गए, अनेक अलग अलग समयों में बंधे हैं, परंतु अभी वर्तमान में जो उदय निषेक आने वाला है, उदय में आने वाला निषेक है, तो वो पहला निषेक, फिर दूसरे समय में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों के निषेक सत्ता में पड़े हैं। ऐसा जीव अभी तत्व विचार कर रहा है तो उस तत्व विचार के कारण क्या होता है, भविष्य एंड की ओर के जितने मान लेते हम, एक सागर जितने निषेक है उतने जो है उसमें से एक लॉट, दूसरा लॉट, तीसरा लॉट, ऐसे एक छोटे अंतर्मुहूर्त में पूरे के पूरे सागर के जो निषेक है वो वहां से नष्ट होकर उसके सारे परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं। ये छोटे अंतर्मुहूर्त में मान लेते हम 10 समय में हुआ कार्य, एक समय में थोड़े परमाणु आए, दूसरे समय में थोड़े, तीसरे समय में, इस तरह से एक सागर जितनी स्थिति घट गई, कितने काल में, हम 10 समय मान ले, 10 समय में कितनी स्थिति घटी, सागर जितने, उसके परमाणु क्या हुए, छोड़कर गए क्या जीव को, नहीं, नीचे के जो है ना उनमें आकर मिले, तो इतना स्थिति का कांडक एक टुकड़ा उसका नष्ट हो गया, उसको कहते हैं स्थिति कांडक घात। ये बातें बार बार आने वाली है और इसको हम और डिटेल में देखने वाले हैं। अभी तो यहाँ कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं उसके नाम देखेंगे। पहले में पहले हमने क्या देखा, अंतक कोड़ाकोड़ी स्थिति रह जाती है, ये अनेक कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति थी और अभी अंतह कोड़ाकोड़ी यानी कोड़ाकोड़ी से भी नीचे हो गई, मान लेते हैं 70 कोड़ाकोड़ी की थी या 50 कोड़ाकोड़ी थी या ज्ञानावरण की 30 कोड़ाकोड़ी थी, अब कितनी रह जाएगी सभी कर्मों की, अंतह कोड़ाकोड़ी सागर। अब यहाँ कितना बड़ा जो लॉट है वो एक अंतर्मुहूर्त में एक झटके से वो खिरकर कम हो जाते हैं। इसको दोबारा देखेंगे, फिर नए भी यहाँ ड्राइंग करेंगे और फिर उसका सारे प्रोसेस देखेंगे, वो रहने तो अभी हाँ कोई बात नहीं, हम उसको नया ही, क्योंकि वो कैसा होता है उसको समझाकर बोर्ड पर ही समझाएंगे उसको। अब ये तो एक प्रोसेस हुआ, क्या हुआ, स्थिति अंतह कोड़ाकोड़ी सागर रह गई, कौन से प्रोसेस के द्वारा, स्थिति कांडक घात द्वारा। ये अभी तो बस याद रखना है, उसका एहसास, उसका एक्चुअली क्या स्वरूप है वो हम जब बोर्ड में देखेंगे तब ख्याल में आए, नया अभी फिगर करके हम समझाएंगे। और क्या क्या होता है, अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर, किसकी बात चल रही है, आपके पुण्य कर्मों को कोई हाथ नहीं लगाएगा हो, क्योंकि हमें डर है, हमने इतने मेहनत करके पुण्य कमाया है और आप उसको ले जाएंगे कैसा होगा, नहीं कुछ नहीं, अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर, देखो कर्म कहीं गए नहीं है, परमाणु तो जीव की सत्ता में पड़े है, उनका पाप कर्मों का अनुभाग घटना यानी क्या है, तीव्र पाप से मंद पाप हो जाना कर्मों में, तो अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर घाती कर्मों का लता और दारू भाग रूप, घाती कर्मों में हमने, घाती कर्मों में हमने कौन कौन से देखे थे नाम, हाँ ऊपर से अगर हम देखेंगे तीव्रता की ओर से तो शैल, अस्थि, दारू और लता, ये चार प्रकार के हमने स्पर्धक यानी अनुभाग को बताने वाले उसको हमने देखा था, चार थे ना, तो अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर कितना रह जाता है, लता और दारू भाग रूप, कौन से नष्ट हो गए, शैल और अस्थि वाले, देखो बनते समय तो चारों बंधे थे, अब तत्व विचार ही कर रहा है और कुछ नहीं किया उसने, क्या हुआ? शैल और अस्थि वाले नष्ट हो गए और दारू और लता भाग वाले रह गए घाती कर्मों में। और प्रशस्त कर्म और कहाँ कहाँ पड़े हैं? अघाती में है कि नहीं है? है ना? तो उनका क्या होगा? उनका भी अनुभाग घटेगा। तो उनके क्या हो जाएगा? अघाती कर्मों के चार नाम कौन कौन से? ऊपर से नीचे, हलाहल, विष, कांजीर और नीम। तो हलाहल और विष वाले जो स्पर्धक है उनका अनुभाग घटकर वे ही परमाणु अभी किस रूप हो गए? नीम और कांजीर और नीम रूप। अच्छा हुआ ना, पहले तीव्र अनुभाग वाले कर्म बांधे थे, घाती अघाती में जो पाप कर्म थे, तत्व विचार के काल में झटके से क्या हो गया? स्थिति तो घट गई। किसकी? पुण्य की भी और पाप की भी।
पाप की नहीं घटी,
स्थिति दोनों की घटी। स्थिति सबकी, आयु की नहीं घटी, सबकी स्थिति घट गई। कितनी रह गई? अंत कोड़ा कोड़ी सागर। पाप कर्मों का अनुभाग घट गया। कितना? शैल और अस्थि वाला था वो दारू और लता वाला हो गया। देखो ज्ञानावरण के भी इतने सारे वो उसका अनुभाग घटा। और यहाँ अघाते में क्या हो गया? विष हलाहल वाले थे, हलाहल और विष वाले उनका घटकर कांजीर और नीम जैसा हो गया। इसको कहेंगे अनुभाग कांडक घात। पहला कौन सा शब्द देखा था? स्थिति कांडक घात। अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों की स्थिति घटकर अंत कोड़ा कोड़ी सागर हुई थी, उसको हमने कहा स्थिति कांडक घात। अनुभाग चतुस्थानीय था, इसको कहेंगे चार स्थानीय था। अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग चार स्थानीय था। कौन से? अभी ज्ञानावरण आदि जो घाती कर्म है उनमें शैल, अस्थि, दारू और लता थे, ये इनका अनुभाग घटकर उसके अनंत विभाग हो गया। अब ये नीचे के दो ही रह गए, कौन से? दारू और लता। अघाती कर्मों में क्या हुआ? उसमें भी चार स्थानीय थे, ऊपर का हलाहल, फिर विष, कांजीर और नीम। तो ये दोनों का घट गया, वो परमाणु तो रहे जीव के साथ, अनुभाग घटकर कितना हुआ? ये नीचे के दो, कांजीर और नीम। इसको कहेंगे अनुभाग कांडक घात। तो अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग का यह घटना अनुभाग कांडक घात द्वारा होता है। सत्ता में पड़े हुए कर्मों में क्या परिवर्तन हुआ वो तो हमने देखा, फिर से देखते हैं। जीव जब तत्व विचार करता है, तत्व निर्णय अभी हुआ नहीं है, अभी करण लब्धि में भी नहीं आया है, ये प्रायोग्य लब्धि की बात चल रही है। उसकी ऐसी योग्यता हो जाती है कि एक झटके से अंतह कोड़ा कोड़ी स्थिति हो जाती है। किसमें? पुण्य पाप सभी प्रकृतियों में एक्सेप्ट आयु कर्म। आयु जितनी उतनी रहती, उसमें मोक्ष मार्ग में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब दूसरी बात, स्थिति का जो घटना हो जाता है, अंत कोड़ा कोड़ी रहता है, वो कौन से प्रोसेस द्वारा होता है? स्थिति कांडक घात। अनुभाग में क्या होता है? पुण्य का अनुभाग कम नहीं होगा, उसका तो बढ़ेगा, वो बाद में कहेंगे। पाप कर्मों का अनुभाग क्या होता है? घाती कर्मों का चार स्थान के बदले दो स्थान रह जाता है, और अघाती का भी चार के बदले दो रह जाता है। उसके कौन से प्रोसेस द्वारा? अनुभाग कांडक घात। इतनी बात ख्याल में आई? ये सत्ता में ऑलरेडी पूर्व में बंधे हुए की बात हुई, अब इस समय नया बंध भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना, तो उसमें क्या होगा उसको हम देखते हैं। प्रायोग्य लब्धि में जो नया कर्म बंध होता है उसमें स्थिति बंध भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, जो क्रमशः घटता जाता है। यानी जितनी अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति हुई थी ना, उससे भी कम बंध होता है, और जो अभी हो रहा है थोड़ी देर के बाद उससे भी कम होगा, फिर उससे भी कम होगा, फिर उससे भी कम होगा। स्थिति बंध में वो कटौती होती चली जाती है, उसको कहेंगे स्थिति बंध का घटना। और इस शब्द में, उसके शास्त्रीय शब्द में उसको कहेंगे स्थिति बंध अपसरण। उसका नाम है स्थिति बंधापसरण। हम देखेंगे क्या कहते हैं उसको, स्थिति बंध का ये जो क्रमशः घटता जाना, एक एक समय में नहीं घटता। कम स्थिति का बंध हुआ, अंतर्मूर्त तक उतनी ही स्थिति बनती है, फिर उसमें कटौती हुई, फिर अंतर्मूर्त में उसकी बनेगी, फिर कटौती हुई, फिर उतनी ही बनती है। ऐसे अंतर्मूर्त भी हजारों होते हैं यहां पर, तो उसको क्या कहते हैं स्थिति बंधापसरण। हजारों हजारों स्थिति बंधापसरण होने पर क्रमशः कुछ प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है। अभी ये जीव प्रायोग्य लब्धि में है, अभव्य जीव भी प्रायोग्य लब्धि तक आ सकता है। अंतर्मूर्त काल के लिए उसके भी स्थिति का घटना होता है और उसमें भी अनेक प्रकृतियों का बंध कुछ काल तक, अंतर्मूर्त काल तक रुक जाता है। इसके कारण उसको सम्यक्त की प्राप्ति अभी नहीं हो रही है, क्योंकि जो जीव करण लब्धि में प्रवेश करेगा उसको ही सम्यक्त होगा और उसको सम्यक्त नियम से होगा ही। परंतु प्रायोगिक लब्धि तक के परिणाम हुए और जिसके आत्म सन्मुखता नहीं हो जाएगी उसको सम्यक्त नहीं होगा, अंतर्मूर्त के बाद वापस वो अपने पूर्व पोजीशन में चला जाएगा। तो ये क्या कहते हैं, अभी हमने देखा था ना, स्थिति घटी, फिर अंतर्मूर्त तक उतनी बंधी, फिर वो बंध है वो छोटा हुआ और फिर अंतर्मूर्त तक उतना, ये नियम है। एक एक समय में स्थिति का बंधन नया नया है, वो कम नहीं होगा, उतना उतना होगा, फिर घटेगा, फिर घटेगा, फिर घटेगा, ऐसे घटते घटते चला जाएगा।
जैसे
दर एक समय में कटता, एक एक अंतर्मूर्त में कटे, वो भी छोटा छोटा अंतर्मूर्त है, ऐसे हजारों अंतर्मूर्त जाएंगे तो 700 से 800 सागर जितने स्थिति कम बंदी एज कम्पेयर टू ओरिजिनल, तो क्या होगा, विशिष्ट प्रकृति का बंध रुक जाएगा। पहले में पहले नरकायु बंद हो सकती थी, बंद हो सकता था, अभी यहां नहीं बंधेगी। फिर और 700-800 सागर का स्थिति बंध में कटौती हो जाएगी, तब और कोई अन्य प्रकृति का बंध रुक जाएगा। और आगे इसी पद्धति से, यानी स्थिति बंध तो घटता ही चला जाएगा और अनेक प्रकृतियों का बंध भी रुकता चला जाएगा। ये कायम के लिए नहीं रुका है, उतने काल के लिए, अंतर्मूर्त काल के लिए उन प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। इसको कहेंगे प्रकृति बंधापसरण, प्रकृतियों का बंध रुकता चला जाता है। फिर याद करते हमने प्रायोगिक लब्धि में आने पर क्या हो रहा है जीव का, तो उसकी विशुद्धि यानी कषायों की मंदता की ओर बढ़ रहा है। उसके कारण यहां पर क्या होता है कि पुण्य हो या पाप कर्म हो, सबकी स्थिति घट जाती है। उसको क्या कहेंगे, स्थिति कांडक घात। अनुभाग में क्या होता है, पाप कर्मों का अनुभाग चार चार स्थान देखे थे, उसके बदले भी नीचे के दो दो स्थान रह जाता है, वो अनुभाग कांडक घात। जो सत्ता में कर्म थे उनमें स्थिति कांडक घात होता है, अनुभाग कांडक घात होता है। नया बंध होता है उसमें क्या होता है, स्थिति घटती चली जाती है, बंध में नया जो बंध है वो कम स्थिति वाला बनता है, उसको कहेंगे स्थिति बंधापसरण। और क्रमशः अनेक प्रकृतियों का बंध भी रुकता चला जाता है, उसको कहते हैं प्रकृति बंधापसरण। ख्याल में आ रहा है, ये थोड़ी गहरी बातें हैं, कभी सुनी नहीं है।
कांडक
यानी टुकड़ा, क्योंकि बहुत सारे स्थितियों के जो है वो एक साथ कट जाती है, कांडक कहते हैं। गन्ने में वो शेरड़ी आती है ना, उसमें क्या होता है, इसे कांडक कांडक होते हैं टुकड़े, तो एक टुकड़ा एकदम कम हो गया उसमें से, बहुत से लंबी स्थिति थी, देखो ना, मान लेते हैं हम 70 कोड़ा कोड़ी या उसके करीबन स्थिति थी और एकदम अंत कोड़ा कोड़ी हो गई, कितनी सारी अनेक कोड़ा कोड़ी सागर एक साथ झटके से कम हो गई। क्यों, जीव तत्व विचार कर रहा है, हमें लगता है ना ये इससे आत्मा आत्मा करने से क्या होगा, तो जीव तो उस तत्व विचार में मग्न है, कर्मों में ये स्थिति स्वयमेव हो जाती है, कर्मों में ऐसी पोजीशन स्वयमेव बन जाती है। तो हमने चार शब्द नए सीखे, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात ये तो सत्ता में पड़े हुए कर्मों में होता है। जो नया बंध होता है उसमें स्थिति बंधापसरण और प्रकृति बंधापसरण। अब उसमें वो नई स्थिति भी कम बन रही है, अभी अनुभाग जो बंधेगा वो भी पाप में कम बंधेगा, पुण्य में ज्यादा बंधेगा, वो तो बात क्रम से आएगी। ये सारी बातें फिर दोबारा हम देखने वाले हैं। अभी तो प्रायोगिक लब्धि में क्या क्या होता है इसकी लिस्ट बताएंगे, फिर उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। स्थिति और प्रकृति का बंध घटता है। क्या क्या घटा हमने देखे, बंध चार प्रकार के होते, कौन कौन से? प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो यहाँ कहते हैं स्थिति भी कम बनती है, अनेक प्रकृतियां बंधना रुक जाता है। उसी तरह अप्रशस्त कर्मों में घटता हुआ द्विस्थानगत अनुभाग बंध होता है। क्या कहते हैं? अभी हमने देखा था जो सत्ता में अप्रशस्त कर्म पड़े थे उनमें जो चार स्थान थे उसके बदले ज्ञानावरणादि में क्या रहता है? दारू और लता, और अघाती में कांजीर और नीम। अब जो नया बंध हो रहा है वो भी कम दोष जो रहे ना सत्ता में वैसा ही बंध होगा, अब तीव्र बंध उसको नहीं होगा। परंतु प्रशस्त प्रकृतियों में बढ़ता हुआ चतुस्थानगत अनुभाग बंध होता है। जो पाप प्रकृतियां हैं सत्ता में पड़े हुए उनका भी अनुभाग चार से घटकर दो हो जाता है, और उस समय जो अभी नया बंध हो रहा है वो अप्रशस्त में तो द्विस्थानी होता है, और प्रशस्त में क्या होगा? पुण्य प्रकृति में चारों, कौन से? गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, इसको कहेंगे चतुस्थानी, और वो भी बढ़ता हुआ। क्यों बढ़ रहा है? जीव तत्व विचार कर रहा है, ख्याल आए ना? अब आगे और देखते हैं। तो प्रदेश बंध अभी उसकी कुछ खास मायना नहीं रखता है, परंतु प्रदेश बंधे नंबर ऑफ परमाणु कितने बनते हैं तो वो भी अनुत्कृष्ट और अजगण्य होता है, उसकी बात हम अभी गौण करेंगे, उसमें कुछ खास बात नहीं है। उपरोक्त कार्य करने की योग्यता की प्राप्ति होना प्रायोग्य लब्धि है, इसे प्रायोग्यता लब्धि भी कहते हैं। यानी ये जो हमने सारे प्रोसेसेस देखे हैं, ऐसी जीव के परिणाम इस प्रकार के विशुद्ध होते हैं कि ये कर्मों में ये बातें होती हैं। जीव में देखेंगे तो हम कहेंगे विशुद्धि बढ़ी, तो विशुद्धि बढ़ी तो वो बढ़ी कहने के लिए कर्मों में क्या क्या होता है ऐसा कहकर उस विशुद्धि का वर्णन करना है। जीव ने कर्मों में कुछ नहीं किया, परंतु जीव की विशुद्धि इस तरह बढ़ी कि ऐसी बातें कर्मों में हो रही है, ये जीव की ही योग्यता यहां बतानी है। तो इसे प्रायोग्यता लब्धि भी कहते हैं। पूर्व में देखी हुई तीन लब्धि पूर्वक, कौन कौन सी? शोषम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि। जीव तत्व विचार करने लगता है जिस काल में वो तत्व विचार करता है। मान लेते हैं सुबह शास्त्र स्वाध्याय किया है, अभी उसको दुकान में जाना है, धंधा करना है, नौकरी करनी है, फिर शाम को वो तत्व विचार करने लग गया, उस काल में उसको तीनों ही लब्धि है ही है उस काल में हो, और फिर तत्व विचार में वो मग्न है, उसमें प्रायोगिक लब्धि भी शुरू हो जाती है। तो कहते हैं जीव तत्व विचार करने लगता है उस काल में वृद्धिंगत विशुद्धि के कारण, वृद्धिंगत यानी बढ़ती हुई विशुद्धि के कारण ऊपर बताई हुई कर्मों की अवस्थाएं सहज बनती है, उसके लिए जीव को कोई अन्य पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। जीव का पुरुषार्थ कर्मों में चलेगा कि नहीं चलेगा? तो पुरुषार्थ जीव की पर्याय है, वो जीव के अपने में होगी, कर्मों में उसका पुरुषार्थ नहीं चलता। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कर्मों का उपशम करना, नहीं मैं चाहता हूँ कर्मों का क्षय करना, आपके चाहने से ही बनता है तो सभी कर्मों का एक साथ क्षय कर दो तो सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाएगी, क्यों नलिने बेन? तो ये बातें सहज बन जाती है, जीव उसमें कुछ नहीं कर सकता। जीव कुछ विशेष प्रयोग करता हो इसलिए प्रायोगिक लब्धि होती है, ऐसा नहीं है। इन चारों लब्धि में जीव बुद्धिपूर्वक इतना ही करता है कि तत्व जिज्ञासा पूर्वक तत्व श्रवणादि करके तत्व विचार में लग जाता है। क्या कहते हैं, तत्व जिज्ञासा हुई तो क्षोभम लब्धि और विशुद्धि लब्धि एक साथ हुई। तत्व श्रवणादि कर का श्रवणादि में श्रवण ग्रहण धारण निर्धारण देशना लब्धि हुई और तत्व विचार में लग गया, ये प्रायोगिक लब्धि हुई। ऊपर बताई हुई बातों की अब विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि उसमें अनेक पारिभाषिक शब्द हैं। सरल भाषा में कहना है तो जीव प्रायोगिक लब्धि में आता है तब उसकी सत्ता में पड़े हुए, सत्ता किसको कहेंगे, पहले बंधे हुए कर्म जो अभी सत्ता में है, अभी उदय में नहीं है, तो सत्ता में पड़े हुए पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति घटकर, कौन से कर्मों की स्थिति घटती है, पुण्य के पाप दोनों स्थिति दोनों की घटती है, अनुभाग अप्रशस्त का घटता है और प्रशस्त का बढ़ता है। ये ख्याल में रखना, कहीं भी मोक्ष मार्ग में अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटता है, प्रशस्तों का बढ़ता है, स्थिति दोनों की घटती है, स्थिति दोनों की घटेगी। तो सत्ता में पड़े हुए पूर्वबद्ध कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है, उसी तरह नया होने वाला बंध भी अंतः कोड़ाकोड़ी सागर से कम स्थिति वाला होता है, उसको भी अंतः कोड़ाकोड़ी ही कहेंगे परंतु वो कम होगा। तथा कितनी ही प्रकृतियों का बंधना रुक जाता है, सर्वप्रथम अंत कोड़ाकोड़ी सागर का अर्थ समझते हैं। हमने देखा था ना सागर किसको कहना, 10 कोड़ाकोड़ी पल्य का एक सागर होता है। पल्य किसको कहना, वो लंबा चौड़ा गड्ढा करेंगे उसको भर देंगे रोम खंडों से और 100 साल के बाद एक एक खंड निकालेंगे, हा? ये तो इम्पॉसिबल जैसे लगता जो है ना, लंबा काल है। तो ये जो पल्य प्रमाण काल है, देखो यहाँ तो केवली भगवान ने सब कुछ जाना, उनके पास तो एक एक समय का भी हिसाब है। हमें ये सब ऐसा इमेजिनरी लगता है या इम्पॉसिबल जैसा लगता है कि ऐसे सागरों के थोड़ी कोई हो सकता है, परंतु जो है जो फैक्ट्स है उसको यहाँ बताया है। अब ये सब यहाँ एक योजन चौड़ा एक योजन ऊंडा वगैरह हमने इसको बहुत बार देखा भी था, हम आगे बढ़ेंगे। ये आगे के प्रश्न पर, प्रायोगिक लब्धि से पहले जीव के आयु भी ना मिला, सात कर्मों की स्थिति अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों की होती है। हमने देखा मिथ्यात्व की अलग है, ज्ञानावरणा की अलग है, दर्शनावरण की अलग होगी, चारित्र मुनि की अलग होगी, तो अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों की है। उन सभी सात कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ाकोड़ी सागर की रह जाती है, अर्थात करोड़ गुना करोड़ सागर वर्षों से भी कम होती है। कोड़ाकोड़ी सागर से कम, सुबह लिखा है ना, देखा था ना, कोड़ाकोड़ी ने करोड़ गुना करोड़, एक के ऊपर 14 जीरो, उससे कम और करोड़ सागर से अधिक, इस संख्या को अंतः कोड़ाकोड़ी सागर कहते हैं। कर्मों की स्थिति का यह घटना स्थिति कांडक घात द्वारा होता है। अब ये स्थिति कांडक घात क्या है उसको देखेंगे। कांडक यानी खंड अर्थात टुकड़ा, अनेक निषेकों के समूह को यहाँ कांडक कहते हैं। जब स्थिति कांडक घात कहेंगे तो अनेक निषेकों के समूह को कांडक कहेंगे, जब अनुभाग कांडक कहेंगे तो अनेक स्पर्धकों के समूह को हम कांडक कहेंगे। समान स्थिति वाले परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। एक एक समय में जो उदय योग्य परमाणु है, जो हमने आड़ी रेखा के द्वारा बताए थे, उसको क्या, देखो यहाँ तो वो बंधने वाले की बात की थी, एक समय में बनता है तो उसके निषेक रचना हो जाती है, फिर दूसरे समय बंधा, तीसरे समय में बंधा, चौथे समय में, अब वो मान लेते आबाधा काल पूरा हुआ, वहां जो रेड गोल ऐसा किया है तो अलग अलग चार समयों में बंधे हुए एक साथ उदय में आएंगे, तो उसको हम एक निषेक कहेंगे। सत्ता में ऐसे अनेक निषेक पड़े हुए हैं, वर्तमान समय से लेकर अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों के निषेक सत्ता में पड़े हुए हैं। हर एक कर्म के अपने अपने अलग, ज्ञानावरण के अलग, मोनि के अलग, अंतराय के अलग, सबके अपने अपने। तो सबकी स्थिति घटकर कितनी हो जाती है? अंतः कोड़ाकोड़ी सागर। देखो, समान स्थिति वाले परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। हमने पहले निषेक की परिभाषा देखी थी। एक एक समय में एक एक निषेक, इस तरह अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों के निषेक सत्ता में रहते हैं। उनमें से अंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थिति के निषेक छोड़कर ऊपर के सभी निषेकों के समूह को यहाँ एक कांडक रूप से ग्रहण किया है। हम देखते हैं इसको थोड़ा बोर्ड पर। माइक आएगी वो वहां तक। देखिए, ये सत्ता के निषेक है। अभी यहाँ बंधे की बात नहीं हो रही है। पूर्व में बंधे हुए अभी सत्ता में पड़े हैं। ये वर्तमान कालीन निषेक है। ये एक समय बाद, उसके बाद ऐसे करते करते हम मान लेते हैं ये अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों के निषेक सत्ता में पड़े हैं। जीव तत्व विचार करने लगता है तो हम देखेंगे अभी के ऊपर अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों के निषेक जो है वो नष्ट होकर नीचे आ गए। हम मान लेते कि इतना जो है वो अंतर कोड़ाकोड़ी है। इतने निषेकों को छोड़कर ऊपर के सभी निषेक जो है, अनेक कोड़ाकोड़ी सागर है नहीं, एक कोड़ाकोड़ी सागर से भी अधिक, हाँ यानी कम छोड़ा है, ये बहुत सारे हैं। तो उसमें क्या होता है, पहले समय में कुछ परमाणु नीचे आएंगे और सर्वत्र डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरे समय में और कुछ आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तीसरे समय में और इस तरह से एक अंतर्मुहूर्त में इतने सारे जो है, ये पूरा लॉट, इसके परमाणु नीचे सर्वत्र डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे। ये कार्य कितने समय में हुआ, एक छोटे अंतर्मुहूर्त में ये सारे, इतने सारे निषेक नष्ट होकर इन सारे परमाणुओं का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे के निषेकों में हो गया। यहाँ परमाणु बढ़ गए, नीचे के निषेकों में परमाणु बढ़ गए, क्योंकि वो परमाणु अभी जीव को छोड़कर गए तो नहीं है, परंतु उसका डिस्ट्रीब्यूशन अंतर कोड़ाकोड़ी सागर में हो गया। इतने अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों के जो निषेक है, इनकी स्थिति घट गई और नीचे सभी आ गए। इसको कहते हैं स्थिति कांडक घात। ये ख्याल में है, ये बड़ा टुकड़ा के टुकड़ा नष्ट हो गया ना यहाँ का, और ये नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ तो एक ही स्थिति कांडक घात हुआ है प्रायोगिक लब्धि में, आगे के जो प्रकरण आएंगे उसमें जो होगा वो वहां देखेंगे। अनुभागों में क्या होता है, ये स्पर्धक तो हम इस तरह से दिखाते हैं, इसमें भी जो नीचे के जो द्विस्थानीय स्पर्धक है, ऊपर के जो स्पर्धक है उनका अनुभाग घटकर नीचे के स्पर्धकों जैसा हो जाता है, उसको क्या कहेंगे, ये शैल और अस्थि वाले हैं वो लता और दारू भाग जैसे हो जाएंगे, और विष हलाहल वाले हैं वो नीम कांजिर जैसे हो जाएंगे, तो उसको कहेंगे अनुभाग कांडक घात। ये दो बातें समझ में आई। हम आगे बढ़, ये प्रायोगिक लब्धि का जो प्रकरण है ना वो थोड़ा समझते समझते, क्योंकि नए हैं सब शब्द यहाँ पर, अब पढ़ते हम आगे। देखो इसको फिर पढ़ेंगे। कांडक यानी खंड अर्थात टुकड़ा। अनेक निषेकों के समूह को यहाँ कांडक कहते हैं। तो निषेक किसे कहना, तो समान स्थिति वाले परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं। एक एक समय में एक एक निषेक, इस तरह अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों के निषेक सत्ता में रहते हैं, जो भी हमने वहां दिखाया था। उनमें से अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति के निषेक छोड़कर, यानी नीचे वाले, ऊपर के सभी निषेकों के समूह को यहाँ एक कांडक रूप से ग्रहण किया है। प्रायोगिक लब्धि में एक ही बड़ा कांडक होता है और उस कांडक का सभी वो परमाणु नीचे आ जाते हैं। प्रायोगिक लब्धि के प्रारंभ में एक अंतर्मुहूर्त काल में इस एक कांडक के सभी निषेकों के सभी परमाणु नीचे के शेष निषेकों में निक्षेपण किए जाते हैं, अर्थात उनमें आ मिलते हैं। ये कथन जो है ना, वो समझाने का तरीका है। ये ऊपर से नीचे आना, इन्हें स्थिति घटना को ही कहेंगे ऊपर से नीचे आना, क्योंकि हम चित्र के द्वारा उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसे स्थिति कांडक घात कहते हैं। देखो यहाँ कर्म अभी सत्ता में ही पड़े हैं, जीव को छोड़कर नहीं गए हैं, परंतु तत्व विचार के निमित्त से उनकी अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों की स्थिति घटकर अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण शेष रह जाती है। यह कार्य आयु बिना शेष समस्त सात कर्मों में होता है, अर्थात अप्रशस्त और प्रशस्त सभी कर्मों की स्थिति घट जाती है। आयु की स्थिति तो जितनी है उतनी ही रहती है। लब्धिसार ग्रंथ में स्थिति कांड घात का स्वरूप निम्न प्रकार बतलाया है। अब वहां भी दृष्टांत देकर समझाए, उसको भी पढ़ेंगे तो हमें और क्लैरिटी हो जाएगी। स्थिति सत्व, अभी यहां दो शब्द आएंगे, स्थिति सत्व और स्थिति बंध। स्थिति सत्व जब कहते हैं तो सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति, और स्थिति बंध कहेंगे तो नया जो बंध हो रहा है उस समय वो कितने स्थिति वाला होता है, उसको कहेंगे स्थिति बंध। स्थिति सत्व अर्थात सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति, उसमें से एक एक समय व्यतीत होने पर एक एक निषेक ही खिलता है। स्थिति सत्व एक एक समय का घटता है, क्या कहते हैं। अब हम वो फिगर देखेंगे तो अनेक कोड़ा कोड़ी सागरों की स्थिति है। अब नीचे का एक निषेक एक समय में एक खिरता है ना, उदय में आता है, उसका अर्थ क्या है, खिरकर नष्ट हो जाता है। अब नया बंध होगा वो अलग, परंतु इसमें से तो एक एक निषेक एक एक समय में जाएगा। तो जितना हमने स्थिति कांडक घात द्वारा देखा था उतना जाने के लिए कितने कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष जाएंगे, और उतने काल में नया बंध भी होता रहेगा, यानी इतना तो कम कभी होगा नहीं, ख्याल आए ना। परंतु तत्व विचार के कारण इतने सारे जो स्थिति है वो एक झटके से एक छोटे अंतर्मुहूर्त में वो कम हो जाती है। हमें पता ही नहीं ना तत्व विचार करने से क्या होता है। लोगों को लगता है कर्मों की स्थिति क्यों जाननी, कर्मों की पोजीशन, कर्मों की व्यवस्था क्यों जाननी। अरे जानते तो ये तो गारंटी हो जाती कि इतना करेंगे तो ये सब होने वाला ही है, कोई बिल्कुल निशंक रीति से होने वाली बात है। तो देखो यानी एक एक समय जाने पर एक एक निषेक खिरता है, कब, इन ऑर्डिनरी कंडीशंस। परंतु दर्शन लब्धि और चारित्र लब्धि के निमित्त से, दर्शन लब्धि किसे कहें, सम्यक दर्शन को प्राप्त होना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, यानी जो सम्यक दृष्टि जीव है, और जो चारित्र लब्धि यानी जो संयम वाला यानी जो मुनि दशा वाला जीव है, उसके क्या होता है, उसके निमित्त से स्थिति कांडक विधान द्वारा, जो अभी हमने स्थिति कांडक देखा था वहां भी सम्यक दृष्टि के भी और भी आगे चलकर भी स्थिति कांडक घात होते हैं, तो उसके द्वारा अथवा अपकृष्टि विधान द्वारा अर्थात अपकर्षण द्वारा, ये अपकर्षण ऊपर के परमाणु नीचे आना, इसको कहते हैं अपकर्षण। एक तो है ये स्थिति कांडक घात, और दूसरा ऊपर के अनेक परमाणु नीचे आते रहते हैं और उदय में अनेक प्रकार अनेक आकर असंख्यात गुणा निर्जरा होती है, उसको कहेंगे अपकर्षण द्वारा। ऐसा जो अपकर्षण है वो तो सम्यक दृष्टि के और संयमियों के यानी ऊपर के गुणस्थानों में होता है। पहले हमने देखा था ना, पांच नलों में से पानी आ रहा है, पांच नलों में से बढ़ रहा है। अभी क्या हो रहा है, ये ऊपर के सारे परमाणु इतनी मात्रा में नीचे आते हैं, नीचे डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो नीचे के निषेकों में ज्यादा माल आ जाएगा, और ऐसे निषेक खिरते जाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारी निर्जरा होगी। तो अधिक प्रमाण में स्थितिगत सत्व घटता है। अब उसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार है। अधिक प्रमाण वाला स्थिति सत्व होता है जो हमने देखा अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों का, उसमें प्रति समय उदय आने योग्य अनेक निषेक होते हैं, अर्थात एक एक समय में एक एक निषेक, जो हमने आड़ी रेखाएं दिखाई है वो एक समय में एक निषेक समझना। इस तरह निषेकों की संख्या बहुत होती है, बहुत यानी कितने अनेक सागरों की है ना, तो कितनी होती होगी इमेजिन करना। उनमें से ऊपर के अनेक निषेकों का नाश करके स्थिति सत्व घटाने को स्थिति कांडक घात कहते हैं। नाश करने योग्य सभी निषेकों के समूह को यहाँ कांडक कहा है। ये ऊपर जो हमने राउंड किया है, इतने सारे निषेकों के समूह को क्या कहा यहाँ पर, कांडक। कांडक के निषेकों के सभी परमाणु शेष निषेकों में आवली प्रमाण ऊपर के निषेकों को छोड़कर, अर्थात अतिस्थापनावली छोड़कर नीचे के सभी निषेकों में निक्षेपण किए जाते हैं, अर्थात आ मिलते हैं। अभी इसको थोड़ा गौण करके इतना ही हम देखेंगे, ऊपर के निषेकों के परमाणु का क्या होगा, जीव को छोड़कर चले जाएंगे क्या, नहीं, क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऊपर के इतने निषेक बने हैं उनमें से परमाणुओं की स्थिति घट जाएगी, तो घट जाएगी तो हम उनको कहाँ दिखाएंगे, नीचे के निषेकों में। इन सर्व परमाणुओं में से कुछ परमाणु प्रथम समय में निक्षेपण किए जाते हैं, यानी एक समय में कुछ परमाणु नीचे आ गए, दूसरे समय में और कुछ, यानी पहला लॉट, दूसरा लॉट, तीसरा लॉट, उसको फाली कहते हैं। क्या कहते हैं, फाली, एक फाली गिर गई, गिर गई ना ऊपर से नीचे आई, फिर दूसरे समय में और परमाणु आए, दूसरा लॉट आया, तीसरा लॉट आया, चौथा लॉट आया। हम मान लेते हैं दस समय में कार्य होने वाला है, तो दस समय के दस लॉट में ऊपर के सभी निषेकों का नाश होकर उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा परमाणुओं का, नीचे सभी परमाणु मिल जाएंगे और स्थिति घट जाएगी, कर्मों की स्थिति इतनी सारी घट जाएगी एक साथ। कुछ द्वितीय आदि समयों में इस प्रकार यथायोग्य अंतर्मूर्त काल तक, अभी हमने दस समय माना ना, तो उतने काल तक सभी परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं, ऊपर के विवक्षित यानी पर्टिकुलर निषेकों का नाश होता है, अभाव होता है। जितने निषेकों का नाश होता है उतने समयों की स्थिति घटती है। अभी हमने ऊपर जो देखा था अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों की स्थिति घटकर अंत कोड़ाकोड़ी हो जाती है। अब उसको दृष्टांत लेकर समझाते हैं। बधा निषेक में ऊपर के सभी परमाणु नीचे के सभी निषेकों में डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं।
उनका भी कोई नियम है?
बिल्कुल, उसकी कितनी संख्या में है क्या है उसका गणित है, पूरा गणित है। इसलिए यहाँ भी हमेशा मैं ऐसे टेपरिंग जो दिखाती हूँ, सबसे नीचे के निषेक में अधिक परमाणु होते हैं, ऊपर विशिष्ट मात्रा में कम होते हैं, वो सारा जियोग्राफिक रिसेशन में वो सब आता है और बिल्कुल उसके गणित है सब, उसके बाद हम नहीं यहाँ छेड़ेंगे। हाँ, अब यहाँ 48 समय के निषेक कितना छोटा फिगर लेके समझाए हैं, दृष्टांत है। जैसे स्थिति सत्व 48 समय है, अनेक कोड़ाकोड़ी सागर के बदले समझाने के लिए 48 समय लिए, यानी 48 निषेक है, उसके 48 निषेक है, और सर्व निषेकों के परमाणु 25,000 है। 48 निषेकों में मिलकर सभी परमाणु कितने हैं, हाँ 25,000। उनमें से 8 निषेकों का नाश करना है, यानी उसका कांडक घात में कितने का घात होगा, 8 का, अर्थात 8 निषेकों के एक कांडक का घात करना है, उनमें 1000 परमाणु है, मान लेते उनमें 1000 परमाणु है, क्योंकि नीचे के निशेकों में ज्यादा होते ना, इसलिए ऊपर 1000 माने। वे परमाणु शेष 40 निशेकों में से ऊपर के दो निशेकों को छोड़कर नीचे के 38 निशेकों में आ मिलते हैं। ये क्यों और कैसे, ऐसा ही स्वरूप है। नीचे के जो 40 है ना, उसमें से ऊपर के दो छोड़कर नीचे आएंगे। ये दो छोड़े हैं, एक्चुअल में कितने छूटते हैं, एक आवली प्रमाण छूटते हैं, उसको कहते हैं अति स्थापनावली। मैंने उसको छोड़ दिया था पहले, फिर भी यहां समझाने के लिए उन्होंने ले लिया इसको। तो नीचे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उनमें से कुछ परमाणु पहले समय में एक समय में कुछ परमाणु आएंगे, 1000 है ना सब टोटल, पहले समय में कुछ आएंगे, दूसरे में कुछ, तीसरे समय में, इस तरह से उन्होंने ये 4 समयों में मान लिया है। इस प्रकार 4 समयों तक मिलते हैं। चौथे समय में शेष सभी परमाणुओं को उन 38 निशेकों में मिलाकर ऊपर के 8 निशेकों का अभाव होता है। इस तरह 48 समयों का स्थिति सत्व घटकर 40 समय रह जाता है। 8 निशेकों का अभाव हुआ तो नीचे 40 रह गए। दार्ष्ट्रांत यानी एक्चुअल में, दृष्टांत यानी जिसका हमने वो तो समझाया है, उदाहरण लेके एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल। अब एक्चुअल में क्या होता है, वास्तव में अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों के निषेध स्थिति कांडक घात यानी कांडक घात द्वारा नष्ट होकर उनमें से सर्व परमाणु, अभी जो हमने बोर्ड पर देखा था, अंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं। इस तरह एक अंतर्मूर्त में अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों का स्थिति सत्व घटता है। जिस एक आवली प्रमाण निषेकों में ये परमाणु नहीं दिए जाते, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, ऊपर के निषेकों में नहीं होता है, उसको कहेंगे अति स्थापनावली। उसको आप भूल भी जाओ तो अभी यहाँ कुछ हर्जा नहीं है, हम इतना ही देखेंगे। ऊपर के इतने सारे जो कांडक में जितने सागरों के निषेक थे, उनकी स्थिति घटकर अंत कोड़ाकोड़ी हुई। बनते समय तो सागरों की बंदी थी, अब क्या हुआ, घट गई। क्यों, जीव तो तत्व विचार कर रहा है, उसको पता भी नहीं है कर्मों में क्या हो रहा है। तो जिसको पता नहीं उसके कर्मों में स्थिति घटेगी कि नहीं घटेगी, नलिनी बहन? तो जिसको पता नहीं है कर्मों में ऐसी स्थिति घटती है, उसके घटेगी कि नहीं घटेगी? घटेगी, जरूर घटेगी। उसको कर्मों का ज्ञान हो या न हो, जरूर घटेगी। जिस तरह स्थिति कांडक घात द्वारा कर्मों का स्थिति सत्व घटता है और अंत कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण शेष रहता है, उसी प्रकार अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर अनंत वे भाग प्रमाण अनुभाग शेष रहता है। हमने देखा था 4 स्थान के बदले 2 स्थान है और एक एक में अनंत स्पर्धक है, तो उसका अनंतवा भाग ऐसे कर अनंतवा भाग रहता है। यह कार्य अनुभाग कांडक घात द्वारा संपन्न होता है। पूर्व में सत्ता के अप्रशस्त प्रकृतियों में जितना अनुभाग था उसके अनंत भाग करेंगे तो बहुभाग वाले स्पर्धकों का अनुभाग घटकर एक भाग जितने स्पर्धकों के समान कम अनुभाग होता है। इसमें तो अनंत बहुभाग घटता है, अनुभाग में बहुत बड़ा कार्य होता है। निषेक तो असंख्यात ही होते हैं, क्योंकि सागर जितने हो गए, अनेक सागर है तो भी वो असंख्यात होते हैं, और अनुभाग में स्पर्धक अनंत होते हैं, तो उसका अनंतवा भाग शेष रह जाता है। या इसे ऐसे भी कह सकते कि तीव्र अनुभाग वाले ने शैल और अस्थि वाले तथा हलाहल और विष वाले स्पर्धक नष्ट होकर उनके परमाणु मंद अनुभाग वाले दारू और लता वाले तथा कांजीर और नीम वाले स्पर्धकों में आ मिलते हैं। और यह भी एक अंतर्मूर्त द्वारा होता है, इसको अनुभाग कांडक घात द्वारा कहते हैं। अब यहीं पर हम रुकते हैं। ये क्या है, इसमें बहुत सारे नए शब्द है, नई टर्मिनोलॉजी है, और वो हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ये क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं है, फिर भी हम फिर दोबारा इसको देखेंगे ना, सब सरल हो जाएंगे। लो 2400 भगवान की जय।